श्रीमद् भागवत भागवताम कल मैंने बतलाया था रोमी जी की बातों को सुनकर और तत्पश्चात रुक्मिणी और सत्यभामा की बातों को सुनकर मूलमती कृष्ण की माता मां वृद्धापात मोती जिसने पहले रोहिणी मैया के द्वारा अवज्ञा की गई थी, रोहिणी मैया ने पहले उसकी बातों को सुन करके भी नहीं सुना था और ये पद्मावती इस समय कुछ परिहास व्यंग्यक भंगी से हंसी मजाक की भंगी से कृष्ण का चित्त स्वस्थ करने के लिए वो बोली और उसका ये भी तात्पर्य था कि महाराज उग्रसेन का राज्य भी न दे दें कृष्ण उन लोगों ब्रजवासियों, इसलिए वो बोलने लगी सिर कपाती हुई। आखिर तो कृष्ण की माता मही है, इसलिए कृष्ण के प्रति ममता उसकी है, किंतु किस रूप में उसकी ममता स्वार्थमयी है। चाहे ब्रजवासी लोग सब मर जाएं, गाय मर जाएं, वहां के आदमी मर जाएं, किंतु कृष्ण मथुरा में ही रहे और यहाँ रहने पर भी ब्रजवासियों को कृष्ण कुछ ऐसा न दे दें कि उनके पति उग्रसेन का राज्य भी चला जाए। इसलिए सब विषयों पर विचार करते पूरी ये बोल कहने लगी। क्या कहने लगी? त्वानुकम्प्यते कृष्ण कथम मंत्र मंतितम श्रेणु यद एकाम अभिभव नंद गोपेश प्रमंतु। कहने लगी जो देखो तुम लोग कृष्ण के लिए अनुताप क्यों कर रहे हो, ब्रज में रहे ठीक है रहे, उसके लिए कृष्ण उनके देने के लिए क्यों चिंतित रहे और तुम लोग क्यों चिंतित हो गए। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो सलाह दे रही हूं उसे सुनो। देखो दोनों ये भाई लोग 11 वर्ष तक नंद ब्रज में थे, नंद बाबा के घर में थे और जो कुछ उन्होंने खाया पिया है उसमें से कुछ तो बनता है कि नंद बाबा की गैया चराया जो बड़े कष्ट से, उसका भी तो महीना कुछ लगना चाहिए। खैर वो दें और न दें कोई बात नहीं, इसकी पाई पाई गर्भमुनि से इसका अकाउंट किया जाए, हिसाब पिसाब किया जाए और यदि कुछ उनका शेष बचता है इसका आनंद बाबा का ब्रजवासियों का जो उन्होंने खिलाया पिलाया है तो उसका दोगुन दे दिया जाए, किंतु सारा राज्य देने की कोई जरूरत नहीं, दोगुन दिया जाए। तात्पर्य क्या कहते हैं गोपराज को, गोपराज माने नंद बाबा गोप हैं, अरे उनके घर में क्या है केवल तो गायों का छाछ है दूध है बस यही तो, इसका दाम कितना होगा। और केवल 11 वर्ष तक और वो भी हिसाब काट करके, कौन सा हिसाब, हाँ जब तक से गैया चराया उसका भी तो कोई महीना या वेतन है, तो इसको निकाल करके क्या बचेगा, कौड़ी कौड़ी हम विचार कराएंगे गर्व से, वो महाज्योतिषी हैं, एक पैसे की भूल नहीं होगी, हमारे पति का एक पैसा भी नहीं जाएगा पितर से, ये भाव वो हिसाब करके सब निकाल देंगे। और गुरुष का कितना खर्च है, गायों का तो दूध दही बह रही है वहाँ नंदगोकुल में, उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए मैं स्वयं शपथ करके कह रही हूँ हम अपने पति से जो कुछ हिसाब निकलेगा उसका दोगुना मैं करके और जरूर नंद को दिलवा। इसमें एक बात आई, कृष्ण और बलदेव जी 11 वर्ष तक रहे इसमें लिखा है, ये जन्म से लेकर के, जन्म से लेकर के 10 वर्ष कितना
8 महीने
वहां रहे, तो 4-5 वर्ष तो वो या 3 वर्ष तक तो वो मैया का दूध पिया, वो हिसाब में नहीं आना चाहिए। ये भी है देखो हिसाबकारी है, नहीं आना चाहिए। और इसके बाद में बचता क्या है, 11 वर्ष में से 3 यदि चला जाए तो 9 वर्ष बचता है, तो 9 वर्ष में वो 8 वर्ष और 8 वर्ष में मान लिया कि रोज 1-1 किलो 2-2 किलो भी लें तो महीने में कितना लेंगे, और उस समय गोरस का दाम कितना होगा, बहुत सस्ता नहीं के बराबर। ये सुनते हैं कि नंदगांव में एक छाछ कुंड है, उसमें दही मथने के बाद में छाछ को कोई पीने वाला नहीं, तो मक्खन ही खाना ही मक्खन ही इतना है खाएगा कि वो छाछ का कुंड ही वो फेंक देते थे और वहीं पर छाछ जमा रहता, गाय बैल भी वहां के नहीं पीते थे, इतना छाछ और दूध होता, इसलिए कोई भी मूल्य नहीं। दूसरी बात, कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण युवावस्था के प्रारंभ तक अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक रहे। तो इसमें भी सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं ये कोई इसमें असामंजस्य की बात नहीं है। क्यों? श्रीमद् भागवत में तो देखा जाता है एकादश वर्ष, एकादश वर्ष क्यों लिखा गया? किशोर काल तक वहां रहे, तो किशोर काल कितने उम्र की होती है? 15 वर्ष तक उसकी स्थिति है किशोर की। उसमें भी एक चढ़ता हुआ किशोर है, नौ किशोर वयसंधि का है, एक मध्य वयसंधि का और एक व्यक्त है। तो उस समय व्यक्त 15 वर्ष तक का किशोर माना जाता है कृष्ण के लिए, गोपों के लिए, और किशोरियों के लिए 12-13 वर्ष की 14 वर्ष था। तो उतने दिन तक निवास किया, इसका सामंजस्य क्या होगा उसके लिए कह रहे हैं कि जिस समय अक्रूर राम और कृष्ण को ले जाने के लिए गोकुल में आए उस समय उन्होंने कृष्ण को किशोर रूप में दर्शन किया था। किशोर रूप में दर्शन किया था और जब कृष्ण कंस को, कंस के चारुणा मुष्टिक के पहलवानों से जबकि लड़ने के लिए गए तो मथुरा की किशोरिया ने उसे देकर के क्या कहा था? किशोर मूर्ति, कामदेव रक्षा। कामदेव ये किशोर मूर्ति में हुई, गोपीनाम स्मरण मूर्तिमान। इसलिए उस समय का भी किशोर वर्णन किया गया। वैसे तो कृष्ण जब तक रहते हैं इस जगत में धराधाम किशोर मूर्ति की ही रहते हैं, कभी भी वो युवावस्था में नहीं होते, उनके मूछे और दाढ़ियां नहीं होती, कभी नहीं होता। ये भगवत्ता का एक विशेष लक्षण है सब भगवानों के लिए, किंतु कृष्ण के लिए विशेष करके। रामचंद्र जी को भी ऐसा देखा जाता है, 11,000 वर्ष की आयु में भी वो वृद्ध नहीं हुए, एकदम जुआ जैसे लग रहे हैं। और कृष्ण तो 100 वर्ष की उम्र में भी एकदम युवक किशोर ही दिखते हैं। उस समय किशोर कलेवर का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आता है। अतएव जौवन अभी पदार्पण नहीं किया जिस समय कि कृष्ण ने कंस के अनुचरों को मारा, और किशोर कोने से एकादश वर्ष ही समझ में आता है, किंतु कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में ही ऐसे मक्खन और दूध मलाई खा करके ऐसे हो जाते हैं मानो 15-20 वर्ष के हो। इसलिए रामकृष्ण कंस वध के पश्चात जब यज्ञोपवीत धारण किया और रंगभूमि में वसुदेव देवकी को प्रणाम किया और बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं, वो ऐश्वर्य को दे करके ये कितना ये बलवान है, स्वयं भगवान है, इसलिए पुत्र भाव समाप्त हो गया और आए ये भगवान हैं। तो वो कह रहे थे हम लोग आपके पुत्र हैं, हमारे बाल्य पौगंड और किशोर उम्र की लीलाओं को आपने अनुभव नहीं किया, कुछ उपभोग नहीं किया आपने। उस समय तो मैं वृंदावन में था, पुत्र होने पर भी मैं पुत्र था, किंतु आप लोगों ने वो भाव पौगंड किशोर अवस्था की लीलाओं से आप वंचित रहे, क्योंकि मथुरा में आते ही कृष्ण ने परम ऐश्वर्य प्रकट किया। अब वहां मथुराधीश हो गए, जरासंध से कितनी बार युद्ध किया उन्होंने, इसलिए ऐश्वर्य भाव वहां पर। कभी कभी शंख चक्र गदा पद्म भी धारण कर, यहां भी वैसा ही बालक रहते हैं जब कृष्ण, तो अभी किशोर उम्र रहती है, उसके लक्षण सब बतलाए गए, उसके उदाहरण दिए गए हैं उज्जवल नील मणि में, किंतु वह साधारण आदमी सुनने के योग्य नहीं है। इसलिए कृष्ण का नित्य किशोर स्वीकार करने पर भी वो नित्य किशोर अवस्था में ही रहते हैं, अथवा किशोर का पंचदश वर्ष में भगवान गोकुल से मथुरापुरी आए थे, ऐसा भी किसी किसी ने कहा है, ये भी ठीक है सनातन गोस्वामी का, क्योंकि पंचदश वर्ष तक किशोर की शेष अवस्था रहती है, और यही श्रृंगार रस का समय है। इसके बाद मथुरा आने पर श्रृंगार रस उनका समाप्त हो जाता है, वो नहीं रहता है। इसलिए उसने जो कहा पद्मावती ने वो ठीक ही कहा, वो न्याय संगत है। व्हाट आई टोल्ड हु विल स्पीक। यू कैनॉट डि नॉट अंडरस्टैंड।
Krishna Balaram, 10 years and 8 months,
परिस्थित जी ने अपनी मैया से कहा, हे माता जी, कृष्ण ने पद्मावती की बात सुन करके भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मानो सुनाई नहीं, इसीलिए ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? उद्धव जी से पूछा, इस प्रकार से पूछा मानो वो कुछ जानते नहीं, अज्ञानी व्यक्ति है, कुछ नहीं जानते। इसका भी कोई कारण विशेष है, वो कारण ये है, मैं तो ब्रज में जाना चाहता हूं किंतु यहां माताजी हैं और पिताजी और मथुरा के लोग हैं, वो दुखी होंगे। इसलिए उद्धव यदि कह देगा कि ब्रज में आपका जाना ही उचित है, उसके बिना वो मर जाएंगे, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात से कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, तुम तो बोलो भो विद्वद्वत् तत्रत्य अखिला भी प्राय विद्वान, आप ब्रज में गए, काफी दिन वहां रहे, ब्रजवासियों से घुले मिले, नंद बाबा से, गोपियों से भी, और उसके बाद में उनकी भावनाओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और आप उन्हीं सब का विचार करके हमें बतलाइए मैं उन्हें क्या दूं, कैसे वो प्रसन्न हो गए। क्योंकि देवकी जी ने भी ऐसा कहा था कि तुम उनको जो देना है सो दे दो, इसलिए पूछा। जो देवकी मैया का भी आप अभिप्राय है तो मैं अपने मन से करूंगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उद्धव ही बतलाए और तब फिर मैं कहूंगा जब उद्धव तो हमारा मंत्री और शहीद है, इसने जैसा कहा वैसा मैंने पालन किया, दोष हमारे ऊपर में नहीं आएगा, वो उद्धव के प्रति ही आएगा। तत्व इसे सुन करके उद्धव जी हृदय में बड़े दुखित हुए, बहुत दुखी हुए कृष्ण की बात सुनकर, और क्षण भर तक लंबे दीर्घ निश्वास को छोड़कर और फिर बड़े अनुताप के साथ में दुख करते हुए वो, क्यों? इसलिए उद्धव प्रेम में विवश, ब्रज में गए, गोपियों की दशा देखी, गायों की दशा देखी, सारे ब्रज को देखा, एकदम सुना, और बछड़े गायें हैं कि मर गई, गोपियां भी कुछ हैं कि नहीं जब से लौटे हैं, इसलिए वो सोच रहे थे कि यदि कृष्ण, हमने भी प्रतिज्ञा की थी ब्रजवासियों से कृष्ण को लेकर के ही आऊंगा, और जब यहां आया कृष्ण दुखी तो हुए किंतु गए, और फिर वही बातें हमसे ये पूछ रहे हैं, मतलब क्या? भगवान इस विषय को जानते हैं, कृष्ण इस विषय को जानते हैं कि ब्रजवासियों का क्या अभिष्ट, वो क्या चाहती हैं, राज्य चाहती हैं या ब्रजवासी लोग चाहते हैं नंद बाबा इत्यादि राज्य चाहते हैं, नहीं, वो क्या चाहते हैं, किसी प्रकार से हमारा बेटा ब्रज में लौट आए, किसी प्रकार से हमारे प्राण बल्लभ कृष्ण लौट करके आए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी वो लोग नहीं चाहते हैं। कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु फिर भी उद्धव जी से उन्होंने पूछा, और उद्धव जी भी इसको समझ करके, देखो तो कृष्ण कैसे चतुराई से बातें करते हैं, है भीतर से निष्ठ, जानते हैं कि मेरे गया बिना, मेरे गए बिना उनको सांत्वना नहीं होगी, किसी को भी नहीं सांत्वना होगी, यहां तक कि गायों और बैल बछड़ों को भी नहीं, गोप गोपियों की तो बात ही क्या है, तथापि हमसे पूछ रहे हैं, इसलिए ये अनजान की बातें क्यों पूछ रहे हैं, जाने की इच्छा नहीं है शायद, कुछ टाल बहाना कर रहे हैं। इसलिए उद्धव जी गोपियों के प्रेम से विवश और उनके भाव को समझ करके कुछ विचार किया कि ये कृष्ण क्यों बोले, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, और फिर समझ करके बड़े विषाद करते हुए दुख प्रकाश करते हुए बोले तत्सुत्वा, यही बतला रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, चाहे वो ब्रज में हो चाहे जहां भी हो, दो बातें उनके साथ में रहती हैं, वे मधुर रस का आस्वादन करते हैं फिर भी उनकी ऐश्वर्यमय शक्तियां उसी में रहती हैं, माधुर्य जी के द्वारा वो आच्छादित रहती हैं किंतु समय समय पर वो प्रकटित हो जाती हैं, इसलिए सर्वज्ञता और मुग्धता दोनों बातें एक ही साथ में। सर्वज्ञ हैं, कोई भी भक्त मथुरा वृंदावन में रास कर रहे हैं और कोई भक्त उनको पुकारता है, यदि द्रौपदी ने कर्ण स्वर से उनको पुकारा तो वो पुकार उनकी कान में जाएगी कि नहीं जाएगी, इसलिए वह सर्वज्ञ भी हैं और साथ साथ में क्या है मुक्त, मुक्त माने क्या? ओ अबोध की भांति कुछ नहीं जानता हूं मानो ऐसे, तो सर्वज्ञ और परम परम दयालु शिरोमणि भगवान उनकी इन बातों को सुनकर के उद्धव बड़े दुखी हुए और सोचा उन्होंने जी ये वंचना मात्र है, केवल ये वंचना कर रहे, जाने की इच्छा नहीं है इसलिए ऐसा ही कर, मैं तो उनको चला जाना चाहिए, जिस दिन मैं वहां से ब्रश से लौटा इनको बतला उसी दिन इनको चलना चाहिए। गए तात्पर्य क्या, क्यों वंचना कर रहे? तादृश प्रियजन जो ब्रज के लोग हैं, नंद बाबा यशोदा सखा लोग सखियां, उनके प्रति कृष्ण का ऐसा व्यवहार रूढ़, ऐसा निष्ठुर व्यवहार, वो विचार करके विस्मित हो गए। हमने सोचा जाए इनका चित्त भी द्रवित हो जाएगा, तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ब्रजवासियों के संग से अक्रूरता नहीं हुआ और लोगों का नहीं हुआ, किंतु इनका क्यों हुआ? कुछ तो ब्रज का भाव आएगा ही, उनके प्रति सहानुभूति आएगी, क्योंकि उन्होंने वंदना की, आशा महो वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु अभक्तंसा जावैश्यार्चित अजाद भी आप कामय इत्यादि श्लोक, ये बतलाया उनकी महिमा, इसलिए कुछ तो उनके अंदर में है, इसलिए ये विस्मित। ऐसे ब्रजवासी जो उनके लिए बड़े कातर विरह में हो रहे हैं और इनकी वो वंचना कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके समझ में नहीं आया। हाँ, किंतु कृष्ण के भीतर में जो भावना है, मेरे जाने से भी उनको सांत्वना नहीं होगी, शायद ये इस बात को नहीं समझ रहे, इसलिए क्या कहने लगे? उद्धव वाच न राजस्वरता विभूत न दिव्य वस्तुनि चते भवत न काम कामयन्ते अन्यदपिह किंचित अमूत्रस्य प्राप्यते भवन्तम्। वो नंद बाबा ब्रजवासी और गोपियां आपसे कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी, उनका प्रेम कैसा है? निस्वार्थ अन्ना विलासिता शून्य, इसकी ये चरम सीमा तक है गोपियां, उनसे बढ़कर के और नहीं। और लोगों का कुछ हो सकता है, किंतु गोपियों का एकदम अन्ना विलासिता रही है और निरंतर कृष्ण की सेवा में तन मन वचन से उनकी है और वहां तक पराकाष्ठा तक है। वे कोई भी विभूति राजैश्वर्यत्व अथवा पारिजात इत्यादि स्वर्गीय वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करते, द्वारकावासी चाहते हैं, इसलिए कृष्ण ने पारिजात पुरुष पर लाया ओ सत्यभामा के लिए और स्वर्ग का वो राज्यसभा वहां पर ले आए उन लोगों की। इन लोगों को तनिक भी कोई कामना वासना नहीं है, आपके अतिरिक्त, आपके विजय के अतिरिक्त अर्थात आपके ब्रज में जाने के अतिरिक्त कोई भी लौकिक और पारलौकिक कोई भी भोग द्रव्य की उनकी कामना कदापि नहीं है। इसलिए यहां तक कि गोपियां कहती हैं आश्लीष वा पादरतां पिनष्ट मन अदर्शनां माम मर्महतां करो यथा तथा विदथा लंपटो स मत प्राणाथ तुषाय। यदि कृष्ण को ब्रज में रह मथुरा में रहकर वो द्वारकावासियों मथुरावासियों के साथ में रहना उनको पसंद है, उसमें उनका जी चाहता है वहीं रहे, यहाँ पर लौट करके ना आए, चाहे उनके विरह में हम मर छटपटा करके मर जाएंगे, तो अभी जहां उनको सुख मिलता है वहीं रहे, नागनी अपनी दुख सबे बांछी तार सुख, मोरे जदि दिले दुख तार भैल महासुख से दुख मोर सुख। यदि कृष्ण हमारे हृदयों को पीस दे दुखों से हमारे सामने अन्य बालाओं से वो मिले, महालंपट दुराचारी भी हो तो भी हमारे दूसरा कोई, इसलिए कभी उनके अंदर में ऐसी कोई भावना नहीं आई। इसलिए कृष्ण यदि मथुरा में और द्वारका में सुखी हैं तो सुखी रहे, हम लोग दुख से मर जाए किंतु वहीं पर जाते समय ब्रज को मथुरा लौटते समय उद्धव ने पूछा श्रीमती जी से, उन्होंने तो आपके लिए संदेश दिया था किंतु आपका कुछ संदेश कृष्ण के प्रति है, तो वो बोली नहीं। फिर दूसरी बात कही, दूसरी बात, फिर तीसरी बात बोली कि आपका कोई संदेश हो जे कृष्ण शीघ्र यहां पर लौट आए तो मैं उनसे कहूं। उन्होंने कहा कहना मत, मत कहना, ये भी मत कहना कि आपके विरह में गोपियां तड़प तड़प करके मर रही हैं, उनका हृदय मक्खन से भी कोमल है, हाथ में लेते ही मक्खन पिघल जाता है, उससे भी यदि कृष्ण का हृदय, इसलिए कृष्ण हम लोगों का दुख नहीं सह सकेंगे, हो सकता है कि तुरंत शरीर को छोड़ दें, इसलिए मत कहना। वो वहां सुखी हैं, हम लोग भी उनको भूल चुकी हैं, उनको आने की जरूरत नहीं यदि उनको। इस तरह से ब्रजवासी कृष्ण के व्यतिरिक्त आपके अतिरिक्त उद्धव करें, आपके अतिरिक्त और कोई भी राज्य स्वर्ग विभूति इत्यादि की कोई भी कामना नहीं करती है। आप ध्यान से सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, और सुनने के बाद में स्वयं विचार करें, और विचार करके जो कर्तव्य है आप वही करें। आप मेरी बात को सुनिए, यदि अच्छी लगे तो करेंगे और अच्छी ना लगे तो मत करिए। कृष्ण को आपने जब कंस को मारा, नंद बाबा गांव के बाहर में, मथुरा नगरी के बाहर में जमुना के तट पर गाड़ी के साथ में प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण बलदेव आए। उस समय वह दोनों नहीं आए, बोले देखो बलदेव तुम हमारा पुत्र है, यह बात ठीक है, किंतु तो भी बल देवकी के या वसुदेव के सारे पुत्र मारे गए हैं, केवल तुम ही है, तुम यहां नहीं रहेगा तो वसुदेव और देवकी दोनों मर जाएंगे, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहां कुछ दिन बात करो। बलदेव बोले ये असंभव है, मैं कृष्ण को छोड़कर के एक सेकंड भी कहीं इधर उधर नहीं रह सकता, इसलिए आप कृपा करके कृष्ण के साथ में हमें ही भेज लेते थे। कृष्ण बोले आपके बंधु तो वसुदेव देवकी हैं, मैं जानता हूं कि बलदेव जी जाएंगे तो ये मर जाएंगे और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए बलदेव का रहना अच्छा है, किंतु बलदेव रह नहीं सकता, इसलिए तो मैं यदि आप आदेश दें तो मैं भी कुछ दिन दो चार दिन कृष्ण के साथ में यहीं पर ठहर जाऊं, और फिर काम होने के बाद में हम दोनों भाई लौट आएंगे। नंद बाबा बड़े दुखी हुए, कृष्ण ने राजभवन से बड़े बड़े बेशकीमती हीरे जवाहरात इत्यादि के आभूषण इत्यादि और वस्त्र स्वर्णिम वस्त्र इत्यादि ले आए और उनको ये मैया को दे देना और मैया गोपियों को दे देंगे। नंद बाबा मन ही मन में सोच रहे हैं ये क्या हुआ, एक तो ये गया नहीं, यशोदा से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जरूर कृष्ण और राम को ले करके आऊंगा, एक तो मैं नहीं ले जा सका और ये गहना और ये अलंकार ले जा रहा हूं उनको देने से, वो कह ये तो बेच करके आया कृष्ण को और बलदेव को बेच करके आया है, मैं कैसे मुख दिखाऊंगा। किंतु कृष्ण के अनुरोध करने पर ले तो गए और बोले यशोदा मैया से और गोपियों से, देखो ये आभूषण स्वर्ण अलंकार इत्यादि भेजा है उसके सुख के लिए तुम लोग, और कुछ दिनों में ही वो जरूर आएगा क्योंकि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है। परम सत्यवादी है, इसलिए जब आएगा तो देखेगा जैसे तुमने धर्म नहीं किया तो वो बड़ा दुखी होगा, इसलिए तुम उनको, तो इसलिए कृष्ण की प्रीति के लिए ही उन लोगों ने धारण किया। किंतु बोली थी पहले, क्या आपने यानी आभूषण के बदले कृष्ण को भेज करके यहां पर आए हैं? आनंद बाबा उस दिन से घर से कभी नहीं निकले, कभी निकले नहीं। इसलिए कह रहे हैं आप, मैं जो कहता निवेदन कर रहा हूं आपके चरणों में, आप बड़ी सावधानी से सुने। यदि आपको अच्छा लगे तो करें और ना अच्छा लगे तो मत करो, मैं उसमें कर ही क्या सकता, ये आपके के इच्छा के ऊपर निर्भर है।
Otherwise, why is he asking me all these things? So an interesting dichotomy. Akura went to Vrindavan, but Akura's heart did not melt. When Uddhava went to Vrindavan, Uddhava's heart melted a little bit, and something came to him. Why? Because Uddhava offered so many stars and studies and prayers to the feet of the gopis. Therefore, by the mercy of the Vrijvasis, something also came in the heart of Uddhava. So all the Vrijvasis are niswad. That means they have no self-interest. And of all the Vrijvasis, the gopis are the topmost. Therefore, they are the complete definition of anyamilasakasamyam ganakarma adhiravitam. They perform nirata seva, continuous seva to Krishna. The Vrijvasis are not interested in any type of material opulence, from swaga or from anywhere else. So this is the difference between the Vrijvasi and the Gaudavasi. For example, yesterday we heard how Satyabhama, she wanted the flower, the Parijat flower from heaven, and how the Gaudavasis wanted the Rajasada from Indralok. Therefore, even the Gaudavasis have some type of desire for something from swaga, the heavenly planets. But the Vrijvasis, they're not interested in anything material or spiritual. They're only interested in having the lotus feet of Krishna again and serving him. Like gopis pray, asti sava punadupanashtramam adashramam mamaram atam karotibhav. The gopis pray, oh, if Krishna is happy there in Mathura, if Krishna is happy there in Dwarka, and we don't want to force him to return to Vrindavan, if he is happy there, then let him stay there happily. Like Radharani pray, nagani apunesu karamacha kasu kasu namaratakasa. Radharani pray, I don't want my own happiness. What do I want? The goal of everything is for Krishna's happiness. So Krishna can do anything he likes. He can make me happy by embracing me, or he can crush my heart underneath his feet. Even though he is debauchee and full of many bad qualities, still, he is mine. So when Uddhava saw all the prayers of the gopis and Vrijvasis, when Uddhava delivered the sandarshan of Krishna, that time Uddhava was thinking, or maybe the gopis want to give some message back to Krishna. Therefore, Uddhava asked 3 times, is there anything you want to say to Krishna? Is there anything you want to say to Krishna? But the gopis, Srimati Radhika said, oh, no way to give any message to Krishna. In fact, you should not mention that we are suffering in separation from Krishna in any way. Say that we are very happily here residing in Vrindavan. Because Krishna's heart is very soft, more than butter. So if Krishna hears that we are suffering in his separation, then maybe Krishna will also experience great suffering, and maybe Krishna himself may even die. So you would have said, thinking all these things, you would have said, oh, I can give advice, but I don't know if that advice is good, or I don't know if that advice is bad. You can decide for yourselves. So after Krishna killed Kamsa, Chandramustik, and his friends, that night, Nanda Baba was waiting in his bullet cart, just outside Vrindavan. And he was waiting, but that night Krishna never returned. But the next day, somehow, Krishna and Balaram escaped and came to see Nanda Baba on his cart. So, Baladev, it's true, he is, we can say, the son of Vasudev. So, like a clash kind of interest. So Krishna was thinking what to do. Should I stay in Mathura? Or should I return with Nanda Baba back to Vrindavan? So Krishna began to say, oh Baba, Nanda Baba, is it true? Vasudeva and Devaki are your friends. So Devaki, she has lost her 6 sons. She has no sons, no one to comfort her. So what should we do? So Nanda Baba suggested, I think that Balaram, he can stay in Mathura for a few days. So Balaram said, that is quite impossible. I cannot be separate from Krishna. So Nanda Baba was in a hopeless situation. What to do? So, considering everything, it was agreed that Krishna and Balaram would stay in Mathura just for a few days, and afterwards they would return to Vrindavan. So now Krishna had become king. So Devaki gave many, many ornaments, his armor and the necklace. So as a token of his affection, Krishna gave all his jewelry in the hand of Nanda Baba. And Nanda Baba, empty-handed, accepted the jewelry, he returned to Vrindavan. That time, what was the condition of Nanda Baba? Nanda Baba had promised, your money is so well with Vrijvasis, promised I must bring Krishna Balaram back to Vrindavan. But when Nandabhava came back, what did he have? No Krishna Balaram, only one pile of jewelry. So all Vrindavan became very sad, and they began to accuse Nandabhava. Oh, Baba, what have you done? Have you sold Krishna Balaram? And this is the price that you got for them, his jewelry? So Nandabhava was very sad. So Nandabhava said, no. My son Krishna is Satyavadi. That means anything he says must come true. Therefore, this is Krishna's token of affectionate view. So Krishna returns to Vrindavan, because he said he will return. And if he sees all of you not wearing these ornaments and decorations, then Krishna will become very sad. Therefore, in order to please Krishna, you should wear his ornaments.
Saranagat Bhakta, he is praying for Krishna. Saranga Saranagati Hoibe Jahar Tahar Prarthana Sune Nanta Kumar. So if Krishna is totally absorbed in Vrindavan in Ras Leela day and night, serving Radhika there, his lotus feet. And if any bhakt like Draupadi, any bhakt like Gajendra, or any Saranagat bhakta, He praying with what? With core of their hearts. Who will hear? Because Krishna is totally observed there. Who will hear? Anyone can tell that, the manifestation of Krishna, that is Paramatma, who is Sakshi, he will hear. But he is not praying to such Narayan or Paramatma Kirodasai. He is not praying. He is praying to Krishna, Nanda Kumar. Krishna is bound to hear. That is why I told that he is Sarvajna and at the same time he is Mukta. He is Mukta. Because at that time, Yog Maya serving him. She is searching any occasion that I can measure. And she serves. Krishna does not know all these things, but even, she does that. अब हम लोग विषय पर अपने आते हैं. नंद बाबा गहने ले आए, अलंकार ले आए और लेकर के गोप गोपियों के सामने रखा. करे बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है. उद्धव उसे देख करके गोपियां कह रही हैं या ब्रजवासी, हम लोगों के जीवन को धिक्कार है, बहुत धिक्कार है. अभी हम लोग बच कैसे रही हैं? कृष्ण ने यही अंत में सोचा, जी हम उनसे आभूषणों की अपेक्षा करते हैं, हम उनको नहीं चाहते हैं. जो कृष्ण आ रहे हैं और अलंकार रुपया पैसा भेजते रहे, जैसे कोई एक व्यक्ति विदेश में सर्विस के लिए गया, वहाँ पर रुपया वो कमा रहा है, रुपया कमा रहा करके और भेज रहा है मनी ऑर्डर से अपने घर वालों. घर वाले कहते हैं अच्छा है, यदि रुपया नहीं भेजता तो हमारा जीवन कैसे चलता. ये स्वार्थ है. ऐसे गोपियों का ये धिक्कार है हमें. जो कृष्ण ने यही समझा, हमारे प्रेम का यही मूल्य है आभूषण, ये सोचा. धिक्कार है हमारा, हमारे प्राण इसको देकर के निकल नहीं रहे हैं. धिक्कार है, धिक्कार है. हमारा हृदय वज्र से निर्मित है. कृष्ण को छोड़कर के ये बसन और भूषण नंद बाबा ने लाया हमें और कृष्ण ने भेजा. ये नंद बाबा को भी धिक्कार है, अपने को तो धिक्कार दे रही है, नंद बाबा को भी धिक्कार. और कृष्ण के लिए सोच रहा है कि कृष्ण ने यही समझा कि हमारे प्रेम का मूल्य. हो प्रभो, आपकी मैया यशोदा और उनके साथ में समस्त ब्रजवासी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. आयाश्यति, आपने प्रतिज्ञा करके उनसे कहा मैं आऊंगा तो कल नहीं तो परसों जरूर आऊंगा, इसीलिए अपने प्राणों को धारण करें ये आएगा और यदि हम मर गए तो क्या होगा. उसी को चैतन्य चैतामृत में बतलाया गया है कि हम तो मर गई होती, मरते क्यों नहीं हो, इसलिए कि यदि वो आएगा फिर देखेगा जी हम नहीं हैं तो भी मर जाएगा. तो वही प्रिया धन्य है जो है चैतन्य समझता से ही. प्रिय और प्रियतम दोनों धन्य है वो जो प्रिया के लिए अपने जीवन को रखता है, वो प्रिय धन्य है. और जो प्रियतमा अपने प्रिय के लिए ही जीती है वो धन्य है. चैतन्य चैतामृत एक अद्भुत ग्रंथ, वही प्रेम होती है जो मर नहीं जाती बल्कि उनके लिए जीवन धारण करती है. देखो राधिका जी तो ये कहती हैं यही हे मालती हमने तुम्हें लगाया, मालती का पौधा, अब वो पुष्प देने योग्य हो गए। तो कहती हैं विरह में, देखो अब तो मैं मर रही हूं, जब कृष्ण आएंगे तो ये फूलों का हार अपना जो मिला करके और कृष्ण को पहना दे और कहना जो तुम्हारी चिंता करते करते जब कितना विरह बैठा की बात। तो जसोदा मैया उस समय में जब देखा अलंकार, तो आप आएंगे, तुम आओगे, इसकी आशा को संपूर्ण से छोड़ दिया, अब नहीं आएगा। अब तक आशा थी छी आएगा, जरूर आएगा, किंतु अब वो आशा भी लिप्त उठ गई और मृतक की भांति मृतपाय होकर के अनशन व्रत पर बैठ गए। खाना पीना सोना सब कुछ यशोदा मैया ने छोड़ दिया। तो उन गोपियों की क्या दशा होगी, यदि यशोदा मैया की ये दशा है तो उनकी क्या दशा होगी। कृतापराधवत नंदो वक्तुं किंचित् दिनत्रय अशक्तो अत्यंत शोकार्तो ब्रज प्राण प्राणान् गतान्। नंद बाबा भी ब्रज में जब गए तो अपने को ब्रजवासियों का अपराधी समझा, हमने बहुत बड़ा भारी अपराध किया, ये अलंकार लेकर के क्यों लिया, कृष्ण से अनुरोध से तो लाया किंतु इनको देखने से इनके प्राण विकल हो रहा है, जी अब कृष्ण नहीं आएगा, मैं इनको कैसे समझाऊं, विकल हो गए। 3 दिन तक कोई बात नहीं किए, किंचित दिन त्रय कुछ भी बात किसी से नहीं किया, घर में पड़े रहे औंधे मुख होकर के, और पीछे भी शोकार्थ अत्यंत काकर होकर के, मानो प्राण उनके कंठ तक आ गए हैं। ऐसे ब्रजवासियों को देखकर के उनकी प्राण की रक्षा के लिए 3 दिन के बाद में शपथ करके बोले, कि हमारा बेटा जरूर आएगा, परम सत्यवादी है, आप लोग चिंता मत करें, जरूर आएगा जरूर आएगा। विश्वास उत्पन्न किसी तरह से कराया, कैसे विविध प्रकार की चातुरी से उनको सांत्वना किसी प्रकार से किया, ये ब्रज की नौ।
So this is called Kriya Lava, and both live only for the happiness of one another.
some hope Krishna must return. But when she saw Nandava coming with the bag of jewels, then her last hope was completely smashed and finished. So she gave up everything, eating, sleeping, everything, and just wept day and night. So this is the position of Mali Soda. Can you imagine the position of the gopis? So Uddhava was thinking, what can we do now? I cannot go there again because I promised the gopis that I would return and definitely bring Krishna. So Nandava, he was weeping and crying for 2 days, and his live hairs had come up to his throat. And just before someone dies, their live hairs come out of their mouth. So Nandava's live hairs had come to him, but he did not die. Because he was thinking, if Krishna comes back to Vrindavan and we are all dead, then how much do you experience suffering and pain? Therefore, for Krishna's happiness, we should live. So Nandava was thinking, no, my son is part of Satyavati. He is always telling the truth. Therefore, we have to have faith in his words. When he says he will return, he must return. So this hope Nandava and his last is maintaining their life.
Uddhav ji ne kaha, ये आपने स्वयं कहा था नंद बाबा को, क्या कहा था? ज्ञातीन वो द्रष्टुम ए श्यामो विधाय सुहृदं सुखम। सुहृदं मैंने होता है बंधु बांधव, आपके जो मित्र या भाई जो वसुदेव देवकी इत्यादि हैं, यादव लोग हैं, उनका कुछ दिन तक सुख विधान कर मैं ज्ञातीन, आप जो हमारे ब्लड रिलेशन से युक्त आत्मी जो स्वजन है, आत्मा से संबंधित, आप लोगों को देखने जरूर जाऊंगा। नंद बाबा यही उद्धृत कर रहे हैं ब्रजवासियों को और सांत्वना दे रहे हैं शपथ बात को कह करके कि देखो हमारा पुत्र बड़ा सत्यवान है। उसने ऐसा कहा है कि मैं अविलंब ही बहुत शीघ्र ही इन लोगों को, शहीदों को सुख विधान कर मैं शीघ्र ही, आप जो हमारे आत्मीय हैं, आपसे जो मैं पैदा हुआ हूँ, आपका पुत्र हूँ, मैं आप लोगों को दर्शन करने के लिए आऊँगा। तो वो जरूर आएगा, कभी भी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए नंद बाबा तरह तरह की युक्ति इत्यादि का अवलंबन करके उनको समझा रहे हैं। द्रव्याण आदौ प्रेम चिन्हानि पुत्र एतान्यत्र प्राहिनोतु सत्यवाक शीघ्रम पश्चात आगमिष्यत अवश्यम तत्रत्व प्रस्तुतार्थ समाप्त। हमारा जो अभी कुछ काम रह गया है, दूसरों का संहार करना, भी जरासंध इत्यादि है, पौंड्री इत्यादि का भी संहार करना बाकी है, यह काम पूरा करके जरूर मैं आऊंगा। इसलिए आप लोग उस पर विश्वास रखिए, हमारा पुत्र कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह से नाना प्रकार की युक्तियों से समझाने लगे। द्रवणाद्यो प्रेम चिन्ह, और ये जो अलंकार देखा भेजा, ये तो प्रेम का चिन्ह है और कुछ नहीं, जिसको हमारे पुत्र ने भेजा। इसको देख करके क्यों विराहग्नि में तड़पती हो तुम? प्रेम का चिन्ह ये इसलिए उसने जो भेजा है प्रेम का चिन्ह, इसे आप लोग धारण करें। और जब वो आएगा तो देखेगा तो वो प्रसन्न होगा जी हमारी भेजी हुई चीजों को इन्होंने धारण किया। इसलिए आप लोग तनिक भी सो मत।
So when Krishna sent the message with Uddhav, that time Krishna said, oh Nanda Baba, don't worry. I am staying here with Yadavs and all your friends I have lost today with everything because they are related to you. Only for this reason I am staying here with them to give them some type of happiness, Sukhpradam. So Baba, when he saw this message, he was telling all the Vrindavasins, just see, my son is truthful, he must return, just like he said. Krishna wrote, oh, Nanda Baba, you are my life, life of my life, therefore I must come to see you again. So Nanda Baba used many, many types of tricky words, many types.
ब्रजवासी लोग बड़े सरल चित्त के होते हैं। श्रुत्वा थे तत्र विश्वस्य सर्वे सर्वत सरल मानस, ब्रजवासी लोग बड़े सीधे साधे, छल कपट राजनीति इत्यादि से बहुत दूर रहते हैं, केवल प्रेम ही जानते हैं। इसलिए उन्होंने सरल रूप में नंद बाबा के वचनों पर विश्वास कर लिया और उन अलंकारों को भी धारण किया जो कि कृष्ण ने भेजे, जो ये प्रसन्न होगा हमको देकर के। ओ भगवान स्वयं अगत्वा तू जत संदेशम समर्प्यमान प्राणोत्तेन ते सर्वे भगवनीता। और इधर में आप कैसे, आप वो तो सरल चित्त और आप ऐसे कुटिल चित्त वाले हैं जो वही सरल ब्रजवासियों का भी चित्त दुखा रहे हैं, अब वो मरने के प्राय में हैं, क्यों इतना सुन करके भी आप ब्रज में गए नहीं, लौटे नहीं और हमारे द्वारा अपने संवाद भेजवाए, उसका इसका फल ये हुआ मैं उनको सांत्वना तो दिया किंतु उस सांत्वना से उनकी विरागनी और भी अधिक बढ़ गई और उन्होंने ये ठीक किया जैसे अब कृष्ण कभी नहीं आए, इसलिए अब तो एकदम मरने के कागार पर। ब्रजवासी लोग उद्धव जी कहते हैं कि ओ ब्रजवासियों का इतना कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और आपका उनके प्रति ऐसा कुटिल व्यवहार, मन में चिंता कर, इसी के लिए वो कह रहे हैं हमारे द्वारा आपने संवेद संवाद क्या भेजवाया संवाद, अरे मैं कहां नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र हूं, ध्यान लगाने से ही मुझे सभी लोग सब जगह देखे, जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़ा में मिट्टी का कोई भी अभाव नहीं, सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टी है, उसी तरह से मैं मुझसे ये जगत उत्पन्न हुआ और सारा लोक समाज हमसे प्रकट हुआ, तत् मैं ही हूं, ज्ञान दृष्टि से देखो मेरे अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझसे जुदा नहीं हो, अलग नहीं हो, मैं तुम लोग इच्छा करने पर भी मुझसे अलग नहीं रह सकते क्योंकि हमसे ही बनी हो और आप लोग बने हैं, ये ज्ञान जो है तत्व तो भेजा। किंतु गोपियों ने क्या किया, इसी वृंदावन में उसकी गुदड़ी कर दी, फाड़ फूट करके और जमुना में बहा दिया और वो जमुना में बहते 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 गया, पहले गया इलाहाबाद प्रयाग में, जब गंगा में मिल गया और गंगा लेकर के क्या किया, अतल समुद्र में उस ज्ञान की गुदड़ी को बहा दिया। ब्रज में ये सब चीजें संभव नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वहां अंतर्जामी मैं सर्वत्र हूं, तुम इस ज्ञान दृष्टि से हमको दर्शन करो, समाधि लगाओ। गोपियां और बिगड़ गई मेरे उपदेश को सुनकर और स्वयं उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी यही कहा था तो गोपियों ने उसका उत्तर क्या दिया था, याद है आहुष्यते नलिला पदार संसार को पतितो तरणावलंबम गेहम जुसामी। गोपियों ने खींच करके कहा अरे हमारी तो सब समय समझ सहज समाधि है, बचपन से ही आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है ना, आपको भूल जाना चाहती हैं और भूल नहीं सकते, जो लोग समाधि से दर्शन करने की चेष्टा करते हैं नहीं देख पाते और हम उनको भूलने की चेष्टा करने की भूल नहीं पाती और हमको जो की शिक्षा दे रहे हैं, जो संसार कूप में पड़े हुए हैं उनके लिए आपकी भक्ति कैसी है, वो संसार कूप में निकालने के लिए डोरी के समान है, हमें उसकी जरूरत नहीं, संसार कूप पत्तो तरणावलंबम गेहम जुसाम मनस्याव, आप हमारे मन में दिखो, मतलब क्या हमारा मन और मन एक है, इसलिए वृंदावन में आप पधारिए तभी हम लोगों को तृप्ति होगी संतुष्टि होगी, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत सब में है, पार्थिव वस्तुओं में सब में। उसी प्रकार से मन प्राण बुद्धि इंद्रिय गुण समूह ये सब मैं ही हूं। तात्पर्य क्या, तुम्हारे सहित हमारा कभी वियोग ही नहीं है। उद्धव जी के साथ मुख से ये संदेश है, वियोग कहां है देखो तो, वियोग है विचार पूर्वक ज्ञान की दृष्टि से देखो, क्योंकि मैं ही उपादान कारण हूं। उपादान माने मुझसे ही है, तुम लोग बने हैं, सब लोग बने हैं। अतः मन इत्यादि सब का सब जितने भी कार्य हैं, मैं अनुभूत रूप में सर्वत्र ही हूं, मैं ही हूं सब। जैसे चराचर विश्व का कारण पंच महाभूत है, उसी प्रकार मैं भी समस्त के द्वारा मैं हूं, उनका शरीर जो कुछ बना है गोपियों का। इसलिए मुझको संदेश, इससे क्या हुआ, गोपियां और भड़क गई, उनकी विरहाग्नि और ज्ञान हमको दे रहे। इस तरह से उद्धव जी कृष्ण को निवेदन कर रहे हैं, आप विचार करें अभी और कल भी बतलाएंगे। कल मैं कुछ विशेष कार्य से दिल्ली जाने वाला हूँ और फिर उधर ही से उधर में मथुरा में ये कथा होगी। अब तक ये कहाँ हो रही थी, वृंदावन में, अब ये कथाएं कुछ दिन होंगी और फिर इसके बाद में मैं वृंदावन में ही आऊंगा, हमारे परिक्रमा इत्यादि के समय भी उसी से। ये बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इन कथाओं का मर्म अच्छी तरह से समझेंगे। ये सो ट्राई टू रियलाइज ऑल दिस हरि कथा वेरी डीपली एंड ट्राई टू रियलाइज ऑल दिस इज एक्चुअली भजन, नथिंग एल्स इज
भजन,
दिस इज भजन। राधाष्टमी इज कमिंग वेरी सून, 4th of September, नाउ टुडे 29, ओनली 4-5 days, सो आई थिंक नो नीड ऑफ गिविंग इन्विटेशन टू यू बिकॉज यू वांट टू बी इन वृंदावन, so I think that you will not come. Yeah. So what should I do?
Krishna gave the same message to the gopis in Kurukshetra. The gopis hearing this, what happened? They became angry. The gopis are always in Sahaj Samadhi. That means natural samadhi. Walking, eating, moving here and there. They always think of Krishna. So the gopis said, don't tell us to do meditation. Because we try, we sit in meditation and try very hard to think of our husbands, our household duties, our bank accounts. We try very hard to forget you and to think of material things, but we cannot. Therefore, your instruction to perform bhakti to take us out of material world is not very instructive to us. So Radhavani says, because my mind in Vrindavan is one thing. Therefore, you're telling me to think of you in my mind, but I say, no, my mind in Vrindavan is same. So if you put your lotus feet in Vrindavan, this is really meditation. Therefore, when gopis heard the message of Krishna, what did they do? The gopis only became more angry.